संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में केवल एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप बताएंगे कि हमने शुरू में इसमें बताया है कारक कितने होते हैं, जिनको आता हो तो हैंड रेज करेंगे और उनको स्पॉटलाइट करके उनमें से एक को कारक कितने होते हैं बताएंगे। केवल कारकों की संख्या, देखो बहन जी जिनके हैंड रेज हुए हो, छोटी सी ये परीक्षा यानी टेस्ट है आपका, क्या आप संस्कृत व्याकरण की प्रारंभिक स्टेज में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कारक आपको बताए थे, ये किनका, अंजलि जैन बताइए, इनको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज आएगी। हाँ बताइए, छह कारक होते हैं। चलिए दूसरे जिनने हैंड रेज किया हो उनको अभी सही उत्तर आ जाएगा। आप किताब खोल लीजिए, किताब खोलने से मतलब जो आपको सॉफ्ट मैटर भेजा गया है उसमें से देखिएगा, सबसे पहले इसका उत्तर आपको पहले पेज पर ही मिल जाएगा। पहले से मतलब है, हैं? सविता जैन। हाँ बताइए सविता जी, सविता जी बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, जरा इनके लिए सभी लोग तालियां बजाएं। कारक सात होते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न है कारकों के नाम क्या हैं, इन सात कारक के नाम बताना है। अब दूसरी बार हैंड रेज करना है जिनको सात कारक के नाम आते हैं, भले ही आप देख करके बताएं लेकिन उससे आपका विषय पक्का होगा, और जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है वह भी रिवीजन हो जाएगा पिछला विषय। देखो सुरेश पहाड़े जी को स्पॉटलाइट किया है सर, अनम्यूट करें। हाँ बताइए, हमने कारक के नाम पूछे, हमने विभक्ति के नाम नहीं पूछे हैं, कारक के नाम। हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं ठीक है, बोलने दो।
अपादान से कारण संबंध काटी के अधिकरण में पर संबोधन।
ठीक है। एक तो है विभक्ति, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय से लेकर सप्तमी और संबोधन तक आठ आते हैं, और एक एक कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। ये संबोधन को इसलिए नहीं लिया, ये प्रथमा जैसा ही आ जाता है, मुख्य कारक सात होते हैं। अब जो तीसरी चीज दी है वो कारक का अर्थ है, कि कर्ता का अर्थ है ने, उसने किया, उसने पढ़ा, वह गया, उसने खाया, ये जो है कर्ता की पहचान है। तो आगे जो है वो अर्थ है, हमने केवल आपसे कारक के नाम पूछे हैं, तो कारक के नाम केवल सात बताना, और अंत में कहना आपको संबोधन नाम का भी एक कारक होता है जिसकी पहचान होती है हे भो रे अरे, लेकिन इसमें विभक्ति प्रथमा ही लगती है, इसलिए इसको सात कारकों में गिना नहीं है। तो आपने चलिए उत्तर दिया अच्छा। इसी प्रकार से आपके प्रश्नों को संजो करके जो प्रश्न पत्र बन रहा है उसकी परीक्षा आपको 31 जनवरी को देना है, 20 प्रश्न होंगे इसी व्याकरण में, और ऑप्शनल क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, चार ऑप्शन यानी चार उत्तर रहेंगे, तब आपको एक उत्तर में टिक मार्क लगाना रहेगा, सही उत्तर होगा आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अब हम चलते हैं, आइए पेज नंबर 16 पर, यानी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपका कोई यदि कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आप पेज नंबर 16 पर सूत्र नंबर 42 के बाद में 43 पर आते हैं तो संधि के लिए विग्रह करते हैं अक्ष प्लस ओहिनी। आपने पुत्रौष्ठम पढ़ा था, अब देखिएगा कि अक्ष प्लस ओहिनी आता है। तो अक्ष प्लस ओहिनी को पहले हम अनतिक्रम्य विश्लेषित से ऐसे कर लेते हैं, अक्ष के क्षा में हलंत हो गया, उसका आ निकल गया, प्लस ओहिनी है। अब इसके बाद सूत्र नंबर 43, अक्षस्य ओहिन्याम,
अक्षस्य ओहिन्याम,
अक्षस्य ओहिन्याम,
अक्षस्य ओहिन्याम,
अर्थात ओहिनी के आने पर अक्ष के आ को औ हो जाता है, तो इस आ को औ किया गया तो अक्ष प्लस औ हो गया। और उसके बाद उ का लोप हो गया, इसमें कहा है कि उ का लोप हो जाता है, तो उ का लोप हो गया तो अक्ष औ प्लस हिनी हो गया, तो इसका हो गया अक्षौहिणी। तो ना तो इसलिए किया है कि ई के बाद या रा के बाद ना आता है तो उसको ना हो जाता है, जैसे कहते हैं चक्रवर्ती के पास इतनी अक्षौणी सेना थी, तो अक्षौणी ये सेना के शब्द में प्रयोग होती है, अक्षौहिणी ना को ना हो गया तो अक्षौहिणी हो गया। ये संधि प्रकरण के अंदर हम चल रहे हैं। अब आगे चलिएगा, कह रहे हैं प्र से परे ऊढ़ा और ऊढ़ी शब्द के आने पर आ को अ होकर ऊ का लोप हो जाता है, तो प्र प्लस औ, प्रा के आ को औ हो गया और ढाह हो गया, तो इसका बन गया प्रौढ़ा। और ऐसे ही प्रौढ़ी, प्रौढ़ा पुल्लिंग में, प्रौढ़ी स्त्रीलिंग में हो गया। तो ये आपको ये संधि हो गई, या भी चूंकि स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है। अब इसके बाद में आपको आना है प्रा प्लस एषः, ऐश्या, ऐशा, ऐशा और ऐशा। देखो प्र, हाँ ऊपर प्र आ ऐशा, इसका विग्रह कर लिया ना, अलग अलग कर लिया, पूरा प्रा था पहले तो प्रा को हलंत कर दिया, इसमें से आ निकाल दिया, ऐशा हो गया। फिर बाद में ये इसी ऊपर वाले सूत्र से होता है कि ऐशा और ऐशा के आने पर आ को अय हो जाता है, ए नहीं हुआ अय हुआ, तो इसमें फिर संधि हो गई तो प्रैष्यः बन गया, प्रैष्यः और प्रेष्यः बन गया, तो प्र प्लस एषः प्रेषः बन गया, ये प्रैष्यः बना था और प्र प्लस एषः है, तो प्र के आ को निकाल लिया गया, आ को अय हो गया, तो इसको प्रैष्यः बन गया, ये अय होना चाहिए यहाँ, इसको अय, तो प्रैषः बन गया, प्रैष्यः और प्रैषः, ऐसे ये अब आपको जरूर जरूर संधि सरल लगने लग गई होंगी। माने सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो स्वर पहले अक्षर में रहता है उसको अलग अलग करके फिर इसी स्वर को अय हो जाता है, तब इसका लोप, मतलब इसको अय हो गया तो यहाँ इसको दिखाया है, उसके बाद इसकी संधि हो जाती है, जब अय हो गया तो इसका लोप हो जाता है, तो प्रैष्यः हो गया। ऐसे ही प्र आ ऐसा है, इस आ को अय हो गया, फिर इस ए का लोप हो गया, तो प्र अय और फिर शाह प्रैष्यः हो गया। समझ गए ना, ये संधि, ये अय की संधि है, आप आगे भी बढ़ गए हैं। अब इसके बाद में आता है दधि प्लस अत्र, ध्यान से समझना और फिर पढ़ना अपनी पुस्तक में, अच्छे से समझ में आएगा, चाहे तो इसकी फोटो आप ले लिया करें चित्र और उसके बाद में उसको देखा करें, हम आपके लिए ये चौक से लिखते हैं। और दधि प्लस अत्र है, नदी प्लस ऐसा है, तो दधि प्लस अत्र है, इसके ई को निकाल दिया, दध ई अनतिक्रमण विश्लेषित सूत्र जो पढ़ाया था इससे विश्लेषण कर लिया, प्लस अत्र है, फिर दद ई को या हो गया, इस ई को या हो गया, और फिर अत्र है तो दध्यत्र बन गया, आप कह रहे हैं इसमें सूत्र कैसे लगा है? 44 नंबर सूत्र, इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः।
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 अब इसमें करते हैं, कह रहे हैं ई को य हो जाएगा और य कैसा होगा? हलंत। न च परो लोप्यः, फिर इसका पर का लोप नहीं होगा। तब दत् य, अब इसमें आ लग जाएगा तो दध्यत्र बन जाएगा। समझ में आया सबको? और ऐसे ही नदी प्लस ऐसा, तो नदी का ई निकल गया, ई को ए हो, ई को या हो गया और उसमें भी हलंत रहा ऐसा, तो संधि हो गई, नदेशा बन गया। तो बन गया दध्यत्र और नदेशा। इसको लौकिक व्याकरण के अंदर कहते हैं यण संधि, और ये कातंत्र व्याकरण के प्रारंभ का संधि प्रकरण है। इसमें आपको ये संधि बनाने का, आप चाहे यण संधि कहें गुण संधि कहें, लेकिन प्रक्रिया आपकी ये है कि उसमें से ई निकल गया और ई भी यह हलंत हो गया और अत्र का आ का लोप नहीं हुआ, फिर संधि हो गई व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे संधि होकर के नद्यत्र दध्यत्र नदेशा, इस प्रकार से शब्द बन गए हैं। ऐसे ही कर करके आप 44 सूत्र तक पहुंच गए हैं और 60 नंबर के सूत्र तक ला करके हम आपकी परीक्षा लेंगे और थोड़ा थोड़ा टेस्ट हम प्रतिदिन लेते रहेंगे ताकि आपकी व्याकरण ज्ञान से आप स्वयं परिचित हो सकें। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय ये क्लास आज यहीं पर संपन्न हो रही है। कल 45 नंबर के सूत्र पर चलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोक, हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। जय लो द्वाद सांग मई जिन वाणी माता की जय।